नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।